एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो आजकल के माहौल में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक महसूस होती है।
हाँ, कौन सी किताब है
ये? है यूला बिस की चर्चित किताब ऑन इम्यूनिटी एंड इनोक्यूलेशन।
अच्छा, ऑन इम्यूनिटी। हाँ, ये नाम सुना है। ये तो आजकल इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन पर इतनी बातें हो रही हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है इस पर बात करने का।
बिल्कुल। और ये किताब उन सवालों से जूझती है जो आजकल हम सबके मन में कहीं ना कहीं हैं ही। हमारी सेहत, बच्चों के टीके और समाज में हमारी क्या भूमिका है, हमारी जिम्मेदारी क्या है।
हाँ, खासतौर पर जब इतनी सारी जानकारी और कभी कभी गलत जानकारी और इतना डर फैला हुआ हो। मतलब ये किताब यही पूछती है कि भाई ऐसे माहौल में हम सही फैसले कैसे लें।
सही कहा। और ये कोई हवा हवाई सवाल नहीं है। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की हमारी अपनी क्षमता और टीकाकरण, ये आजकल वाकई बहुत बड़े चिंता के विषय बन गए हैं। ईला बिस की खासियत ये है कि वो इस मुद्दे को सिर्फ एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह नहीं देखती, वो एक माँ के तौर पर अपने निजी अनुभवों और गहरे शोध को मिलाकर एक बहुत ही मानवीय और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया पेश करती हैं।
तो ईला बिस के बारे में थोड़ा और जानना दिलचस्प होगा। आपने कहा वो डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही शायद कुछ लोगों को चौंकाता है। वो एक जानी मानी अमेरिकी लेखिका और निबंधकार हैं। उन्हें नॉन फिक्शन राइटिंग के लिए अवार्ड्स भी मिले हैं।
अच्छा।
हाँ, जैसे उनकी पिछली किताब थी नोट्स फ्रॉम नो मैन्स लैंड, उसे नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला था। उनकी लेखनी की पहचान है उनकी भाषा बहुत काव्यात्मक सी और जिस तरह वो अपनी निजी कहानी को बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से जोड़ देती हैं।
तो ये दिलचस्प है, मतलब एक लेखक का नजरिया, ना कि किसी मेडिकल एक्सपर्ट का।
हाँ, और यही बात उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए एक बहुत ही यूनिक पोजीशन देती है। देखिए, जब वो खुद माँ बनी तो वो उसी तरह के पढ़े लिखे साधन संपन्न माहौल का हिस्सा थी जहाँ अक्सर टीकों को लेकर सवाल उठते हैं, हिचकिचाहट होती है।
अच्छा, तो वो खुद उस स्थिति से गुजरी हैं?
बिल्कुल। ये किताब उनके अपने शुरुआती डर और शक से ही एक तरह से पैदा हुई है। तो एक तरफ वो एक माँ की चिंताओं को बहुत अच्छे से समझती हैं और दूसरी तरफ एक बेहतरीन शोधकर्ता और लेखक होने के नाते वो चीज़ों का विश्लेषण भी कर पाती हैं थोड़ी दूरी से।
सहानुभूति भी और विश्लेषण भी।
हाँ, और उनका ये साहित्यिक अंदाज, जैसे वो रूपकों का इस्तेमाल करती हैं, कहानी कहती हैं, संस्कृति की परतें खोलती हैं, ये इसे किसी आम मेडिकल गाइड या पॉलिसी पेपर से बहुत अलग बना देता है। पढ़ने में ज्यादा मजा आता है।
समझ गया। तो ये किताब असल में है क्या? मतलब सिर्फ वैक्सीनेशन पर है या कुछ और भी है इसमें?
नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन पर नहीं है। जैसा आपने कहा, इसका जवाब सीधा नहीं है क्योंकि ये कई चीजें एक साथ हैं। ये एक माँ बनने की कहानी भी है, ये आज के अमेरिकी समाज पर एक तरह की टिप्पणी भी है, और ये डर, जोखिम और समाज में हमारी क्या भूमिका है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, इन बड़े सवालों पर एक सोच विचार भी है।
अच्छा, यानी कई परतें हैं इसमें।
बिल्कुल।
और इसका जो मुख्य तर्क है वो क्या है? मतलब किताब कहना क्या चाहती है आखिर में?
हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। बिस कहती हैं कि इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, ये सिर्फ हमारे शरीर के अंदर की कोई निजी चीज नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एक सामुदायिक, एक सामाजिक अवधारणा है।
सामुदायिक मतलब कम्युनिटी से जुड़ी हुई।
हाँ बिल्कुल। जब हम टीके लगवाने या न लगवाने का फैसला करते हैं तो इसका असर सिर्फ हम पर या हमारे बच्चे पर नहीं पड़ता, इसका असर समाज के सबसे कमजोर लोगों पर भी पड़ता है, जैसे बहुत छोटे बच्चे, बुजुर्ग या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है।
तो ये एक नैतिक फैसला बन जाता है फिर, सिर्फ मेडिकल नहीं।
एकदम सही, ये एक नैतिक फैसला भी है।
लेकिन आजकल तो बहुत से लोग झिझकते हैं टीकों से, क्या किताब इस पर भी बात करती है?
हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि टीके लगवाओ या मत लगवाओ, ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर क्यों पढ़े लिखे अच्छे इरादे वाले लोग भी झिझक सकते हैं।
अच्छा, कारण क्या बताती हैं वो?
वो इस हिचकिचाहट को हमारी संस्कृति में गहरे बसे कुछ विचारों से जोड़ती हैं, जैसे पवित्रता का विचार कि शरीर शुद्ध रहे, उसमें बाहर से कुछ दूषित ना आए।
हाँ, ये डर तो होता है कई लोगों में।
बिल्कुल। फिर सामाजिक वर्ग का भी असर होता है, और सबसे बड़ी बात, जो संस्थाएं हैं, सरकार, दवा कंपनियां, उन पर भरोसे की कमी, ये सारे फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं।
ये तो काफी जटिल तस्वीर है।
हाँ, और किताब की यात्रा भी पाठक को अपने साथ ले चलती है। ये बिसर के अपने निजी डर से शुरू होती है, जब उन्हें अपने नवजात बेटे को पहला टीका लगवाना था, वो कैसा महसूस कर रही थी।
अच्छा, बिल्कुल शुरू से।
हाँ, फिर ये हमें इतिहास में ले जाती है, टीकों का इतिहास क्या रहा है, फिर हम जोखिम को कैसे समझते हैं, उसका मनोविज्ञान क्या है, स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में अमीरी, गरीबी या सामाजिक स्थिति की क्या भूमिका है, और अंत में ये सवाल कि एक व्यक्ति का चुनाव पूरे समाज के लिए क्या मायने रखता है।
तो ये उन लोगों के लिए है जो मतलब आसान जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि मुद्दे को गहराई से समझना चाहते हैं।
बिल्कुल, जो जटिलता से भागते नहीं।
चलिए तो फिर कुछ खास हिस्सों में और गहराई से बात करते हैं। आपने कहा शुरुआत उनके अपने अनुभव से होती है।
हाँ, और वो बहुत ईमानदारी से लिखा गया है। वो बताती हैं कि कैसे अपने बेटे के पहले टीके के समय वो सच में डर और चिंता से भर गई थी।
कैसा डर, मतलब किस बात का?
कई तरह का। दूसरी माओं से सुनी बातें, इंटरनेट पे पढ़ी वैक्सीन विरोधी सामग्री, और बस एक माँ का वो अंदरूनी एहसास कि मैं अपने बच्चे के इतने छोटे नन्हे शरीर में बाहर से कुछ क्यों डालूं।
हाँ, ये स्वाभाविक लगता है।
इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फौरन उन लोगों से जुड़ जाता है जो खुद टीकों को लेकर शंका में। ये उनकी भावनाओं को खारिज नहीं करता, बल्कि उन्हें मान्यता देता है, समझता है।
ये अच्छी बात है।
हाँ।
फिर इतिहास की बात आपने की थी, उसमें क्या खास है?
हाँ, उस शुरुआती बिंदु से बेर फिर पीछे मुड़कर इतिहास को देखती हैं। एक तरफ तो वो एडवर्ड जेनर के चेचक टीके की खोज, पोलियो उन्मूलन जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य की बड़ी जीतों का जिक्र करती हैं।
हाँ, ये तुम सब जानते हैं।
लेकिन साथ ही वो उन मुश्किल सच्चाइयों को भी सामने रखती हैं, जहां मेडिकल प्रयोगों के नाम पर लोगों के साथ ज्यादती हुई, खासकर गरीब या अल्पसंख्यक समुदायों के साथ। तो इतिहास सिर्फ गौरव का नहीं है।
सही बात है, विश्वास टूटने के कारण भी हैं इतिहास में।
बिल्कुल। और ये जानना भी रोचक है कि टीके का विचार सिर्फ पश्चिम का नहीं था। लेडी मैरी वॉटले मोंटागु नाम की एक अंग्रेज महिला थी, वो इसे ऑटोमन साम्राज्य से इंग्लैंड लाई थी, और वॉल्टेयर जैसे विचारक ने इसे तर्क और नागरिक जिम्मेदारी से जोड़ा था। तो टीकों का इतिहास भी काफी मिला जुला है, और इस पर बहस भी कोई नई नहीं, सदियों पुरानी है।
इतिहास के बाद फिर वो आज के डर और जोखिम पर आती हैं।
हाँ, सवाल उठता है कि आज हम जोखिम और डर को कैसे देखते हैं। यहाँ बिज मनोविज्ञान का सहारा लेती हैं। वो बताती हैं कि हम इंसान अक्सर जोखिम का अंदाजा लगाने में बहुत तार्किक नहीं होते हैं ना।
हाँ, कभी कभी छोटी चीज से ज्यादा डर जाते हैं, बड़ी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं।
बिल्कुल, कोई बहुत ही दुर्लभ साइड इफेक्ट की कहानी हमें ज्यादा डरा सकती है, जबकि रोजमर्रा की किसी आम बीमारी का खतरा हमें कम लगता है। मीडिया कैसे किसी खबर को दिखाता है, दोस्तों रिश्तेदारों के अनुभव, हमारी अपनी सुनी सुनाई कहानियां, ये सब मिलकर हमारी सोच बनाते हैं।
हाँ, वो कॉग्निटिव बायसेस जिन्हें कहते हैं।
हाँ, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। बिज बताती हैं कि कैसे ये सोचने के पैटर्न हमें गलत नतीजों तक पहुंचा सकते हैं, और ये सब आज के माहौल में और बढ़ जाता है, जहां माँ बाप पर अपने बच्चों के लिए सब कुछ परफेक्ट करने का इतना भारी दबाव होता है।
और यहीं पे शायद वो विशेषाधिकार वाली बात आती है।
हाँ, यहीं पर एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ा असहज करने वाला मुद्दा सामने आता है, विशेषाधिकार और सामुदायिक जिम्मेदारी का।
क्या मतलब है इसका यहाँ?
बिस का एक तर्क ये है कि कई बार टीके न लगाने का फैसला वही लोग ज्यादा आसानी से कर पाते हैं जिनके पास साधन है, जो ज्यादा सुरक्षित माहौल में रहते हैं।
अच्छा,
क्यों? क्योंकि वो शायद इसलिए ये जोखिम उठा पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं या कम से कम उम्मीद करते हैं कि बाकी समाज, खासकर वो तबका जिसके पास इतने विकल्प नहीं है, वो टीके लगवाकर हर्ड इम्यूनिटी या सामुदायिक सुरक्षा बनाए रखेगा।
ओ, मतलब वो दूसरों के लगवाए टीकों के भरोसे रहते हैं।
हाँ, इसे बिस फ्री राइडिंग कहते हैं, यानी आप एक साझा सुविधा का फायदा तो उठा रहे हैं लेकिन उसमें अपना योगदान नहीं दे रहे।
ये तो सोचने वाली बात है।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक निजी चुनाव भी समाज में गैर बराबरी को दिखा सकता है या शायद बढ़ा भी सकता है। यहाँ व्यक्ति का रोल, उसकी भूमिका और समुदाय का गोल यानी लक्ष्य आमने सामने आ जाते हैं।
ये रोल और गोल का टकराव तो कई सामाजिक मुद्दों में दिखता है।
बिल्कुल, और किताब का एक और पहलू जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है इम्यूनिटी से जुड़े रूपकों यानी मेटाफॉर्स का विश्लेषण।
रूपक जैसे?
बिस कहती हैं कि हम इम्यूनिटी को सिर्फ विज्ञान की नज़र से नहीं देखते, हम उसे कुछ कहानियों, कुछ उपमाओं के जरिए समझते हैं, जैसे पवित्रता और संदूषण का विचार। कि हमारा शरीर शुद्ध रहे, उसमें कोई बाहरी या गंदी चीज ना आए।
हाँ, ये विचार तो है, नेचुरल रहे सब कुछ।
हाँ, बिस दिखाती हैं कि ये बाहरी चीज से दूषित होने का डर कई बार टीके से ज्यादा दूसरी सामाजिक चिंताओं से जुड़ा होता है, जैसे दूसरी नस्ल के लोग, दूसरे वर्ग के लोग या दूसरे देशों से आने वाले। मतलब वो डर कहीं और का होता है पर टीके पर प्रोजेक्ट हो जाता है।
अच्छा, ये तो गहरा विश्लेषण है।
हाँ, उन्होंने तो ड्रैकुला उपन्यास का उदाहरण भी दिया है जिसमें दूषित खून का डर एक बड़ा थीम है।
अरे वाह।
इसके मुकाबले बिस एक नया रूपक सुझाती हैं। वो कहती हैं, शरीर एक बंद किले जैसा नहीं बल्कि एक बगीचे जैसा है या एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र जैसा। हम दुनिया से अलग थलग नहीं है बल्कि उसके साथ लगातार लेन देन में है।
बगीचा, ये रूपक तो बिल्कुल अलग नजरिया देता है। किले में बचाव है, बगीचे में पोषण और देखभाल।
सही, और इसी बगीचे वाले रूपक से जुड़ा है हर्ड इम्यूनिटी का विचार, जिसे बिस ज्यादा बेहतर शब्द सामुदायिक प्रतिरक्षा, कम्युनिटी इम्यूनिटी कहती है।
कम्युनिटी इम्यूनिटी, हाँ, ये शब्द ज्यादा सकारात्मक लगता है।
हाँ,
सोचिए, ये हवा और पानी की तरह एक साझा संपत्ति है, एक पब्लिक कॉमन्स है। जब हम टीका लगाते हैं तो हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करते, हम इस साझा खजाने में, इस बगीचे में अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं।
और इससे उन लोगों की सुरक्षा होती है जो खुद टीका नहीं लगवा सकते।
बिल्कुल, जैसे बहुत छोटे बच्चे, बहुत बुजुर्ग या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग। तो टीका न लगवाने का फैसला एक तरह से इस सामाजिक समझौते से पीछे हटना है, उस साझा बगीचे की देखभाल में अपना योगदान न देना है।
ये सीधे तौर पर हमारे व्यक्तिगत रोल को समुदाय के गोल से जोड़ता है, जैसा आप कह रही थीं।
हाँ, लेकिन ये सब भरोसे पर टिका है ना?
बिल्कुल, बिना भरोसे के तो समुदाय कैसे चलेगा?
और बिज इस बात को मानती हैं, वो स्वीकार करती हैं कि लोगों का बड़ी संस्थाओं पर, जैसे दवा कंपनियां, सरकार पर भरोसा कम हुआ है, और इसके कुछ जायज ऐतिहासिक कारण भी हैं जिनकी हमने बात की।
हाँ, पर वो ये भी चेतावनी देती हैं कि इस अविश्वास के चलते विज्ञान को ही पूरी तरह नकार देना खतरनाक है। उन्होंने एंड्रयू वेकफील्ड के उस बदनाम शोध का जिक्र किया जिसने झूठे तौर पर टीकों को ऑटिज्म से जोड़ा था, और देखिए कितना नुकसान किया उसने दुनिया भर में।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा स्कैंडल था।
आखिर में बिज टीकाकरण को सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं मानती, वो इसे विज्ञान में, भविष्य में और सबसे बढ़कर एक दूसरे में भरोसे के कदम के तौर पर देखती है।
भरोसे का कदम। तो अंत में बिज क्या फैसला लेती है अपने बेटे के लिए?
हाँ, पूरी पड़ताल के बाद वो अपने बेटे को सारे टीके लगवाने का निर्णय लेती है।
अच्छा।
और खास बात यह है कि वो कहती है कि ये फैसला सिर्फ आंकड़ों और जोखिम के हिसाब किताब पर आधारित नहीं था, ये मुख्य रूप से एक नैतिक फैसला था, सामुदायिक जिम्मेदारी और सामाजिक एकजुटता का।
मतलब आंकड़ों से ज्यादा नैतिकता।
हाँ, ये समझना कि उनका चुनाव सिर्फ उनके बच्चे तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे समुदाय की सेहत से जुड़ा है, ये उनके व्यक्तिगत रोल की पहचान थी बड़े सामुदायिक गोल के प्रति।
ये एक बहुत जिम्मेदाराना नजरिया है।
हाँ, तो इस पूरी चर्चा से मुझे लगता है कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं जिन्हें हम शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस करते हैं।
हाँ, क्या है वो मुख्य संदेश?
पहली और शायद सबसे बड़ी बात, प्रतिरक्षा निजी नहीं सामुदायिक है, हमारा स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है। आप देखिए, भारत में ही जब कोई त्योहार होता है या कोई मुश्किल आती है तो कैसे पूरा मोहल्ला या गांव एक साथ खड़ा हो जाता है।
हाँ, वो सामुदायिक भावना बहुत मजबूत है कई जगहों पर,
ये वही जुड़ाव है।
दूसरी बात, टीकों से हिचकिचाहट अक्सर एक विशेषाधिकार का मामला है।
ये सोचने की बात है कि क्या सबको अपनी मर्जी से चुनाव करने की छूट या साधन मिलते हैं, खासकर सेहत के मामले में।
ये तो सच है, भारत में हम जानते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच एक जैसी नहीं है, बहुत असमानता है।
तीसरा, रूपकों की ताकत, खासकर पवित्रता और संदूषण जैसे विचार, ये कैसे अनजाने में हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। भारत में भी देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में, पूजा पाठ में, खाने पीने में, शुद्धता अशुद्धता के विचार कितने गहरे बसे हुए हैं।
हाँ, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। चौथा सबक क्या है?
चौथा सबक है हमारी आपसी निर्भरता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारा शरीर, हमारा जीवन सब एक दूसरे पर निर्भर है। ये कुछ कुछ भारतीय दर्शन की वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना जैसा है, पूरी दुनिया एक परिवार है।
और पांचवा?
और पांचवा, अधिकारियों और विशेषज्ञों पर भरोसे का संतुलन। कब विज्ञान पर भरोसा करें, कब अपनी समझ या पारंपरिक ज्ञान पर, ये बहस तो भारत में भी बहुत आम है, चाहे वो डॉक्टरी सलाह हो या कोई और बात।
सही कहा। ये सारे मुद्दे बहुत प्रासंगिक हैं। अच्छा, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी होंगी जो याद रह जाती हैं?
हाँ बिल्कुल, ये किताब ऐसी पंक्तियों से भरी है जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ विचार जो वाकई दिमाग में बैठ जाते हैं उन पर बात करते हैं।
जरूर।
हाँ, जैसे एक केंद्रीय विचार है जिसका हमने जिक्र भी किया, प्रतिरक्षा एक साझा स्थान है, एक बगीचा जिसकी हम सब मिलकर देखभाल करते हैं।
बगीचे की उपमा,
हाँ,
ये बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली देखभाल है जिसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। ये कोई पैसिव चीज नहीं, एक्टिव काम है।
बिल्कुल। और फिर ये पंक्ति, हम अपने शरीरों में अकेले नहीं हैं, या इसे ऐसे कहें, हम पृथ्वी पर मौजूद हर चीज के साथ निरंतर हैं, विशेष रूप से एक दूसरे के साथ।
ये सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, ये हमारी बायोलॉजिकल सच्चाई भी है। हम सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है और यही समझ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का आधार बनती है।
और इसी जिम्मेदारी से जुड़ी ये थोड़ी तीखी लेकिन जरूरी बात, टीकाकरण से इनकार उस अंतर्निर्भरता से इनकार है जिस पर व्यक्तिगत और सामूहिक स्वास्थ्य दोनों निर्भर करते हैं।
ओह, ये तो सीधा सवाल उठाता है, क्या हम इस आपसी निर्भरता को स्वीकार करने को तैयार हैं, या हम सोचते हैं कि हम अकेले अपना बचाव कर लेंगे?
हाँ, और एक आखिरी विचार जो सोचने का नजरिया बदल सकता है, अगर हम टीके की क्रिया को लड़ने के बजाय सीखने के रूप में सोचें, तो ये एक ऐसी दुनिया का संकेत देता है जिसमें सीखना लड़ने से बेहतर है।
लड़ने के बजाय सीखना, अक्सर हम इम्यूनिटी को जंग की भाषा में सोचते हैं, वायरस से लड़ाई, हमला, बचाओ, दुश्मन।
हाँ, लेकिन बिस कहती हैं, क्या हो अगर हम इसे शरीर के सीखने की प्रक्रिया की तरह देखें? वायरस से लड़ने की तैयारी करना, उसे पहचानना, सीखना, ये ज्यादा सकारात्मक और समझदारी भरा नजरिया लगता है ना?
हाँ बिल्कुल, ये रूपक बदलने से सोच बदल सकती है। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब है, कैसे लागू करें इन्हें?
हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो मुझे लगता है ये हमें बेहतर स्वास्थ्य साक्षरता की ओर ले जाती हैं, मतलब स्वास्थ्य से जुड़ी जो जानकारी हमें मिलती है उसे कैसे परखें, अफवाहों और सच में फर्क कैसे करें, अपने डर और पूर्वाग्रहों को कैसे पहचानें।
जैसे आजकल व्हाट्सएप पर सेहत से जुड़े कितने मैसेज आते हैं।
बिल्कुल, उन्हें आंख बंद करके मानने से पहले थोड़ा रुककर सोचना, सवाल पूछना।
सही है। और दूसरा?
दूसरा, ये नागरिक जुड़ाव और समुदाय के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे बिस सामुदायिक प्रतिरक्षा को साझा संपत्ति कहती हैं, वैसे ही हमारे आसपास पानी, साफ हवा, सार्वजनिक पार्क जैसी कई चीजें हैं जो सबकी साझा जिम्मेदारी हैं।
हाँ बिल्कुल,
हमारे छोटे छोटे काम जैसे पानी बचाना या कूड़ा सही जगह फेंकना कैसे पूरे समुदाय पर असर डालते हैं, ये किताब हमें उस बड़े कनेक्शन की याद दिलाती है। हमारे व्यक्तिगत रोल बड़े सामूहिक गोल से जुड़े हैं।
ये रोल और गोल वाली बात फिर आ गई, ये जरूरी है।
हाँ, और तीसरा, मुझे लगता है ये हमें संवेदनशील मुद्दों पर बेहतर बातचीत करना सिखा सकती है।
कैसे?
देखिए, बेस जिस तरह खुद के डर से शुरुआत करती हैं और दूसरों की हिचकिचाहट को समझने की कोशिश करती हैं, वो तरीका हम भी अपना सकते हैं। किसी के डर को सीधे खारिज करने के बजाय ये पूछना कि वो डर कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे क्या चिंताएं हैं, शायद ये ज्यादा मददगार हो।
हाँ, सहानुभूतिपूर्ण संचार जिसे कहते हैं, परिवार में या दोस्तों के बीच ऐसे मुश्किल विषयों पर बात करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।
बिल्कुल।
तो अगर आपको इस किताब से एक मुख्य सीख बतानी हो तो वो क्या होगी?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ा निचोड़ है हमारी गहरी आपसी जुड़ावट का एहसास, ये समझना कि सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला पूरी तरह से निजी होता ही नहीं, इसका असर हमेशा दूसरों पर पड़ता है, और इसलिए सामुदायिक जिम्मेदारी सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं बल्कि एक जरूरत है।
अपने रोल को सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित न रखना।
हाँ, बल्कि समुदाय के बड़े गोल में योगदान देना शायद यही सबसे जरूरी है आपके लिए।
मेरे लिए मुझे रूपकों की ताकत ने बहुत सोचने पर मजबूर किया, कैसे किला या बगीचा, पवित्रता या संदूषण जैसे शब्द हमारी पूरी सोच को बदल सकते हैं, वो भी शायद हमें पता चले बिना। और साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े चुनावों में विशेषाधिकार की भूमिका का जो विश्लेषण है वो भी आंखें खोलने वाला था। ये किताब हमें उकसाती है कि हम अपने फैसलों के पीछे की मान्यताओं को कुरेदें और उनके सामाजिक नतीजों के बारे में भी सोचें।
सही कहा। तो बिसाइल हमें प्रतिरक्षा को समुदाय से जोड़ना सिखाती है, पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है.
क्या?
आज के डिजिटल दुनिया में जहाँ समुदाय का मतलब ही बदल रहा है, जहाँ हम शायद ऑनलाइन ग्रुप्स में ज्यादा और अपने असली पड़ोसियों से कम जुड़ते हैं, वहाँ सामुदायिक प्रतिरक्षा के इस विचार का क्या होगा? क्या इसका मतलब भी बदलेगा?
ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है. शायद डिजिटल समुदाय की भी अपनी प्रतिरक्षा होती होगी या नहीं, ये सवाल शायद हमें आगे सोचने के लिए छोड़ जाता है.
बिल्कुल.
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है. ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है.